कि यह ग्रंथ मैंने निज भावना के निमित्त अपनी भावना के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। समझने योग्य बात यह है कि जब समयसार परमागम जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए लिखा और उसकी गंभीरता इतनी है कि जिसके लिए लिखना पड़ा कि ग्रंथादि राज तारा मां भावो ब्रह्मांड ना भरिया है ना, तो जो ग्रंथ कुंद कुंद भगवान ने निज भावना के निमित्त रचा हो, माने कैसी अंतर परिणति मुनि भगवंतों की होती है, उस भावना से जो ग्रंथ रचा हो उसका उसकी महिमा के बारे में कुछ भी कहना असंभव है। समय सार की जितनी प्रसिद्धि थी, नियम सार की उतनी प्रसिद्धि कृपालु देव के टाइम तक भी नहीं हुई थी। ये समझना बहुत जरूरी इतिहास है ये, कि नियम सार परमागम कृपालु देव के हाथ में नहीं आया था और सर्वप्रथम जयपुर के शास्त्र भंडार में से ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को इसकी टीका मिली थी और उन्होंने उसके आधार से भावानुवाद तैयार किया और वो भावानुवाद गुरुदेव श्री के हाथ में आया। जैसे समयसार मिला ना, ऐसे गुरुदेव श्री को नियमसार भी वो शीतल प्रसाद जी वाला भावानुवाद मिला और गुरुदेव श्री ने शुरुआत के प्रवचन उसी ग्रंथ के आधार पे किए, लेकिन गुरुदेव श्री के अंतरंग में ये भावना थी कि इस ग्रंथ का भी शब्द से अनुवाद हो तो अच्छा है और उसी उनकी भावना के फलस्वरूप आदरणीय पंडित हिम्मत भाई जी ने इस ग्रंथ का गुजराती और उसके बाद फिर हिंदी में इसका अनुवाद हुआ। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि नियम सार की प्रभावना का श्रेय भी पूज्य गुरुदेव श्री को जाता है, नहीं तो नियम सार को पहले कोई जानता नहीं था, नाम था कि नियम सार कोई ग्रंथ है, लेकिन विशेष प्रचार और प्रसिद्धि गुरुदेव श्री के द्वारा इस ग्रंथ की हुई है। नियम सार माने जैसे समय सार द्रव्य स्वभाव का अधिकार है, उसमें द्रव्य स्वभाव की बात करता है, ऐसे नियम सार नियम से करने योग्य क्या है, नियम से करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, वो नियम से करने योग्य है और उसके साथ में लगा हुआ सार शब्द विपरीतता के निषेध के लिए, यानी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निषेध के लिए वो लगाया है। पूरा जो नियम सार है मार्ग और मार्ग फल की शैली में लिखा गया कि मार्ग क्या है और मार्ग का फल क्या है, मार्ग और मार्ग फल का प्रतिपादन किया है। टीकाकार इस ग्रंथ के एकमात्र टीकाकार, समय सार प्रवचन सार पंचाष्टिकाय ग्रंथ की दो दो तीन तीन टीकाएं मिलती है। नियम सार इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसके एकमात्र टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव हुए, महावैरागी संत, और उन्होंने इस नियम सार में ऐसी बहुत सी अद्भुत और अलौकिक बातें की है कि जिनसे गुरुदेव श्री भी बहुत प्रभावित हुए और वो ये कहते थे कि केटलिक गंभीरता हो तो एवी छे कि जे समय सार मां पण नथी, समय सार करता है केटलिक बातों एमा घणी ऊंची छे, है ना। इसमें एक कारण शुद्ध पर्याय की बात, इसमें उपयोग की बात, उपयोग के भेद किए, ज्ञान ज्ञानोपयोग होता है ना, तो ज्ञानोपयोग के भेद करके कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, दृष्टि की चर्चा की तो कार्य दृष्टि और कारण दृष्टि, ऐसी अद्भुत अद्भुत चर्चा है। वो जो गुरुदेव बोलते थे ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, वो इसी नियम सार की देन है ना, कि त्रिकाली को जानने वाला त्रिकाली ज्ञान त्रिकाल विद्यमान है, क्या कहां से कि त्रिकाली स्वभाव को जानने वाला त्रिकाली ज्ञान त्रिकाल विद्यमान है और वो त्रिकाल जान रहा है, ऐसे स्वभाव प्रत्यक्ष कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग की चर्चा सकल प्रत्यक्ष कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग की चर्चा ये तो इसमें है ही, लेकिन जैसा कि अपन अभी जो ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन ग्रंथ अपन लोग अभी सुन रहे थे जिसके माध्यम से प्रवचन, उस प्रवचन ग्रंथ का नाम क्या है? कारण कार्य नियम। तो एक कारण कार्य नियम भी, ये बहुत गजब की बात है कि ये भी टीकाकार मुनिराज के नाम में से ही लिया गया है। तीसरी गाथा की टीका करते हुए जब नियम सार शब्द की व्याख्या करी उनने, तो कार्य नियम में से कारण नियम निकाला। तो भाई अगर कोई कार्य हुआ है तो उस कार्य का कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कार्य होवे यहां और उसका कारण होवे बाहर में, या बाहर में कार्य कारण होवे और अंदर में कार्य होवे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां कार्य हुआ वहीं उसका कारण विद्यमान है, है ना। तो ऐसे कार्य नियम की चर्चा के उपरांत उन्होंने उसमें से कारण नियम की चर्चा निकाली। ये शैली रही है टीकाकार की कि जहां जहां भी कार्य की चर्चा आएगी वो कारण की चर्चा करेंगे, और जहां जहां कारण की चर्चा आवेगी वहां वहां वे कार्य की चर्चा करेंगे। 12 अधिकारों में ये ग्रंथ लिखा गया, बहुत गंभीर, पढ़ने जैसा और गुरुदेव श्री के प्रवचनों के साथ पढ़ने जैसा, नहीं तो अर्थ निकाल पाना संभव नहीं है इसके। उसमें भी एक शुद्ध भाव अधिकार बहुत जोरदार अधिकार, गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय अधिकार था ये। नियम सार के जितनी बार के प्रवचन उपलब्ध हैं सीडी वगैरह में, उन सब में इस शुद्ध भाव अधिकार के ऊपर प्रवचन हैं, और अतिरिक्त प्रवचन भी अगर नियम सार के मिलते हैं तो वो शुद्ध भाव अधिकार के विशेष मिलते हैं। इसका कारण क्या है कि गुरुदेव श्री के अंतरंग में शुद्ध भाव अधिकार की कितनी महिमा थी, क्योंकि इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं है, सम्यक दर्शन के विषय की चर्चा है। सम्यक दर्शन तो हो जाएगा लेकिन सम्यक दर्शन का विषय, मैंने सम्यक दर्शन का कारण कौन है, सम्यक दर्शन किसका अवलंबन करने से सम्यक दर्शन होता है। गुरुदेव श्री के 45 वर्षों के प्रवचनों की एकमात्र देन अगर हम कहना चाहें तो गुरुदेव के प्रवचनों की एकमात्र देन अपने लिए वो है कि उन्होंने आत्मा के सम्यक दर्शन की चर्चा तो की, लेकिन सम्यक दर्शन का आत्मा कैसा होता है, क्या किसका आत्मा, कि सम्यक दर्शन का आत्मा कैसा होता है, उसकी बहुत गंभीरतम चर्चा गुरुदेव श्री की वाणी में आई है, जो अभी अपन लोग लाभ ले रहे थे। चर्चा अपनी बहुत सुंदर शुद्ध भाव अधिकार पर, बहुत सुंदर अधिकार, एकदम क्रीम अधिकार, कि जिसको पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचती, जिसको सुनने के बाद कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं बचती, और जिस रूप परणमन हो जावे तो बाद में कोई परणमन की आवश्यकता नहीं बचती, ऐसा महान अधिकार। और जितनी ऊंचाई से इस अधिकार में आचार्य भगवान ने बात की, क्योंकि अपन सीधे विषय पर आ जाते हैं, 47 और 48 नंबर की गाथा, कि जिसके बाद जिसके ऊपर ये जो दो कलश, सन 71 नंबर का कलश और 72 नंबर का कलश, कि जिस कलश पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव तीन बार ये बात बोले, जेटलो भाव अंदरमा भासे छे तेटला शब्दो आवता नथी, क्या कल आया कि नहीं है, हाँ उसी की चर्चा कर रहा हूं आज मैं, क्या कि जितना भाव अंदर में भासित होता है उतने शब्द नहीं आते हैं। यानी ये समझो कि जितने शब्द गुरुदेव के बाहर निकले इस प्रवचन के माध्यम से, उनके अंतरंग में इसका कैसा भाव भासित होता होगा वो तो हम कल्पना भी करें तो शायद नहीं। और ये प्रवचन भी कब का है जरा विचार करो आप, देखो गुरुदेव की देखो अब ये कब का प्रवचन है, ये 26/8/1980 का प्रवचन है, यानी गुरुदेव श्री के देह परिवर्तन के लगभग 3 महीने और 1-2 दिन ऊपर का प्रवचन है ये। आप सोचो गुरुदेव श्री की उम्र उस समय कितनी थी, 91 वर्ष की उम्र है ना, और शरीर भी अपेक्षाकृत काफी शिथिल हो गया था, बराबर है ना, शरीर भी काफी शिथिल हो गया था क्योंकि 1-2-3 महीने अब इस पर्याय के बाकी थे। जब ऐसी दशा में भी आज अपन जो गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे और कल आप लोगों ने जो गुरुदेव श्री का ये प्रवचन सुना होगा, आपको लगता है अगर ये नहीं बताया जावे तो ये आप सोच सकते हैं कि 91 साल के जीव की ये वाणी हो सकती है। आप सोचो कितना उनको उत्साह आ रहा था उस प्रवचन में, कितनी उनको उमंग उस प्रवचन में आ रही थी। क्यों? क्योंकि भाई इससे ज्यादा क्रीम कोई बात हो नहीं सकती। अरे जहां हम लोग संयोग के आधार पर, क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर, विकल्पों के आधार पर, आगे कि नहीं आ गया, यानी क्षणिक वृत्तियों के आधार पर जब हम परस्पर एक जीव और दूसरे जीव में भेद डालते हैं, हमारा भेद डालने का नजरिया क्या है कि जिसका जीव में नितांत अभाव है, सर्वथा अभाव है, ऐसे संयोगों के आधार पर हम जीवों में भेद डालते हैं, हम परिणामों के आधार पर जीव में भेद डालते हैं। यहां 47 और 48 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि सिद्ध में और संसारी में कोई भेद नहीं है। जैसे सिद्ध परमात्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, 8 गुणों से अलंकृत, सर्वथा शुद्ध लोकाग्र में विराजमान हैं, वैसे ही भवलीन संसारी को जानो। देखो दो बातें समझना इसमें कि जबी शिष्य को समझाना होगा तो सिद्ध जैसा संसारी, क्या कहेंगे, सिद्ध जैसे संसारी, माने सिद्धों की ओर से संसारी जीवों का स्वरूप समझाया जाएगा कि जैसे सिद्ध भगवान है ना वैसा ही भवलीन संसारी है। लेकिन जब ज्ञानी अनुभूति की मस्ती में आते हैं, ख्याल में आया, जब स्वरूप के अनुभव की मस्ती में आते हैं तब वे ये नहीं कहते कि सिद्ध जैसा संसारी, मैंने मैं सिद्धों के जैसा हूं, यानी सिद्धों से अपनी तुलना नहीं करते। सच तो यह है कि जैसा मैं वैसे सिद्ध हैं। क्या कहा, क्यों, क्योंकि अरे ये सिद्ध हुए, ये सिद्ध दशा किसका माने ये प्रतिबिंब है, ये बताओ जरा, समय सार में क्या लिखा है कि सिद्ध भगवान प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। आया मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि साधने योग्य जो शुद्ध स्वरूप उसको दर्शाने के लिए सिद्ध भगवान प्रतिबिंब हैं, यानी सिद्ध भगवान प्रतिबिंब हैं। और प्रतिबिंब का मतलब आप समझते हो कि कोई बिंब होता है उसका प्रतिबिंब होता है, माने जैसा बिंब होता है दर्पण में ठीक वैसी की वैसी कृति झलके, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो अगर सिद्ध भगवान प्रतिबिंब हैं तो बिंब कौन हुआ, कि बिंब में हुआ है ना। तो अभी क्या करें, क्या माने हम, समझने समझाने के लिए सिद्ध जैसे संसारी और वास्तव में जैसा मैं वैसे सिद्ध, जैसा मैं वैसे सिद्ध, क्योंकि सिद्ध की ओर से शुद्धात्मा का परिचय देना गजब बात है। सिद्ध की ओर से यानी एक समय की ओर से, एक समय की परिणति की ओर से त्रिकाली स्वभाव का परिचय देना, यह भी गौरव की बात तो नहीं हो सकती। लेकिन प्रकट से अप्रकट को समझाने की पद्धति है, प्रकट से अप्रकट को समझाने में सरलता रहती है, इसलिए जिनवाणी भी सिद्ध की ओर से शुद्धात्मा को समझाती है। लेकिन जब समझ जाता है पात्र, तो पात्र जीव समझने पर वो क्या समझता है कि सिद्ध जैसा मैं नहीं लेकिन मेरे जैसे सिद्ध हैं। ऐसी अद्भुत बात, गजब की बात इन नियमसार परमागम में कही है कि जहां अभी इसका जो 71 नंबर का कलश चला था, 47 गाथा 46 गाथा ये सब हुई, उसके बाद 71 नंबर के कलश में, 47 नंबर की गाथा के बाद के कलश में आचार्य देव ने बहुत गजब की बात कही। मुनिराज श्री टीकाकार ने बहुत गजब की बात कही, वो कलश अपन पढ़ते हैं। इसमें है अपना कारण कार्य नियम जो चल रहा है, गुजराती 262 पेज है, चाहे तो निकाल लीजिए 262 पेज। उसमें देखिए, प्रागेव शुद्धता ये शाम सुदियाम कुदियामपि नयेन केन चित्ते शाम विदाम कामपि वेदम्यहम। क्या कहते हैं यहां पे कि जे सुबुद्धियों ने तेमज कुबुद्धियों ने प्रथम तीज शुद्धता छे। आज तो बहुत गजब की बात आई थी। क्या बात आई थी? राग का त्याग करूं और स्वभाव का ग्रहण करूं, ये भी मेरे में नहीं है, क्योंकि जो मैं स्वयं ही हूं उसका मैं ग्रहण करूं, यह बात कहां से लाए? और जिसका मुझ में सर्वथा अभाव है ना, अत्यंत अभाव है कि उसका मैं त्याग करूं, राग का कि मैं त्याग करूं, कि मेरे में है ही कहां जो मैं त्याग करूं। ऐसा स्वभाव आचार्य देव अपने को दिखलाना चाहते हैं। पर के त्याग ग्रहण की बात तो बहुत दूर रही, उन्होंने कहा कि स्वभाव का मैं ग्रहण करूं, राग का त्याग करूं, प्रभु ये बात भी मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, जितनी महिमा करे उतना कम है। तो यहां पर टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि जे सुबुद्धियों ने तेमज कुबुद्धियों ने, सुबुद्धि माने सम्य दृष्टि, कुबुद्धि माने मिथ्या दृष्टि। और वो कह रहे हैं देखो ये अंतर नहीं है ये कहना है, और अंतर भी बता दिया सुबुद्धि, गुरुदेव नहीं बोला ये कि सुबुद्धि और कुबुद्धि कहकर के अंतर तो रख दिया, वो बात तो हो गई, लेकिन कि कुछ भी भेद मैं किस नय से जानूं, क्या शब्द का प्रयोग किया कि सुबुद्धियों ने तेमज कुबुद्धियों ने प्रथम थीज शुद्धता छे। क्या मतलब कि ये जो शुद्धता है ना, कि ये शुद्धता त्रैकालिक है। क्या कहा? शुद्धता कैसी है कि शुद्धता त्रैकालिक है, और ये अशुद्धता ये तो तात्कालिक है। प्रकट होने वाली शुद्धता कि ये भी तात्कालिक है, ये भी अपेक्षित है। आज आया था गुरुदेव के प्रवचन में कि भगवान आत्मा कैसा है, कि भगवान आत्मा निरपेक्ष तत्व है। कैसा तत्व है? निरपेक्ष तत्व। निरपेक्ष तत्व माने क्या? कि निरपेक्ष तत्व इसका अर्थ ये कि जिसको कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं और जिसको कर्म के अभाव की अपेक्षा नहीं, है ना। अरे जिसे अशुद्धता की अपेक्षा नहीं और जिसे अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा नहीं, जिसे प्रकट शुद्धता की अपेक्षा नहीं। आत्मा शुद्ध क्यों है? कि आत्मा शुद्ध इसलिए है कि शुद्धता प्रकट हुई है कि नहीं। प्रकट शुद्धता की भी जिसको अपेक्षा नहीं और प्रकट अशुद्धता की भी जिसको अपेक्षा नहीं, अशुद्धता के सद्भाव की अपेक्षा नहीं और अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा नहीं, वो तो त्रिकाल शुद्ध है। क्यों है त्रिकाल शुद्ध? बहुत शंका होती है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो निगोद अवस्था में पड़ा है, कुबुद्धि भवलीन ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, गाथा में शब्द का प्रयोग किया, भवलीन संसारी वही, भवलीन कहकर के क्या कहना चाहते हैं, भवलीन कहकर के कहना चाहते हैं कि जो निरंतर 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 जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्र चला रहा है, और ये जन्म मरण के चक्र चलने पर भी उस त्रिकाली स्वभाव में रंच मात्र खरोंच नहीं आई, गजब बात यह है। निगोद का जीव एक श्वास में 18 बार जन्मने और मरने की कहानी आती है, छड़ाला में आता है कि नहीं आता है, क्या आता है? एक श्वास में 18 बार जन्मा और मरा, बात तो आती लेकिन सच्चाई कितनी इस बात में है? पूरी है, 1% सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं? सुनो जरा, कि अगर जीव एक श्वास में 18 बार जन्मा और मरा, तो हमारा प्रश्न यह है कि जब वो पहली बार मर गया तो अभी दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया, ये बताओ पहले। शे भाई बोलो, मर गया ना, तो मर गया तो दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया, और यदि दूसरी बार फिर मरने के लिए आया तो जो पहली बार मरा था उसका क्या हुआ? लिखा तो है छड़ाला में, लिखा है क्या छड़ाला को अप्रमाणिक मान ले? नहीं भाई, छड़ाला में वो जो बात लिखी है वो शरीर के संयोग की अपेक्षा से लिखी है। एक श्वास में 18 बार शरीर का संयोग हो जाता है और 18 बार शरीर का वियोग हो जाता है, लेकिन गजब बात ये कि शरीर का संयोग होने से आत्मा नहीं जन्मता और शरीर का वियोग होने से आत्मा नहीं मरता, वो तो अजन्मा और अमरा तत्व है। इसी तरह अशुद्धता के ढेर, ये कहा ना कुछ भी भेद में किस नए से जानूं, तो ये कहा ना कि एक तरफ नित्य निगोदिया जीव की अशुद्धता लो, क्या कहा? अभी अपन खाली ये पढ़ेंगे उससे काम नहीं चलेगा, उसको अपने प्रैक्टिकल अपने सामने वो चित्र खड़े करो कि एक तरफ नित्य निगोद का जीव, अभी नित्य निगोद की बात कर रहा हूं, नित्य निगोद का जीव माने क्या, कि अनादि काल से लेकर आज तक निगोद से कभी निकला ही नहीं, निकल करके फिर निगोद जाए वो इतर निगोद होता है, तो अनादि काल से आज तक कभी निगोद से निकला ही नहीं। एक तो ऐसा जीव जिसके लिए जिनवाणी बोलती है कि भाव कलंक की प्रचुरता का इससे अधिक उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता, निगोद से ज्यादा पतन जीव का पर्याय अपेक्षा से दूसरा हो नहीं सकता, मैंने सर्वाधिक पतन की दशा है वो, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़, भाव कलंक की प्रचुरता। और दूसरी तरफ सुबुद्धि, तो सुबुद्धि में लो सिद्ध परमात्मा, सर्वोत्कृष्ट है ना वो सुबुद्धियों में, कि जिनके एक समय के प्रकट आनंद के लिए कविवर संत लाल जी को कहना पड़ा कि जितने पुद्गल परमाणु शब्द रूप परिणमित हुए हो रहे हैं और होंगे वो सबको मिलाओ, कितने हुए कि अनंत, उन अनंत की संख्या को अनंत से और अनंत बार गुणा करो, कितनी राशि आई, अनंत ही आएगी, अनंत के बाद कोई उत्तर ही नहीं है, है ना। वो कहते हैं कि वो सारे पुद्गल परमाणु मिलकर के सिद्ध भगवान के एक समय के आनंद का वर्णन करना चाहें, तो एक समय के आनंद के अनंत में भाग का वर्णन नहीं कर सकते। सोचो जरा, मैं नहीं कह रहा हूं, सिद्ध चक्र विधान की पांचवी पूजा के अंदर है ये बात, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप भय हैं अतीत और आगे होनहार हैं, ये सब लिखा है। तो दूसरी तरफ लो ऐसे सिद्ध परमात्मा। अब आचार्य कहते हैं कि उस निगोदिया जीव को अशुद्धता की प्रचुरता है, यानी उससे ज्यादा अशुद्धता हो नहीं सकती। सिद्ध भगवान को शुद्धता की प्रचुरता है। क्या मतलब? कि इससे ज्यादा पर्याय में शुद्धता हो नहीं सकती। गुरुदेव श्री से प्रश्न हुआ है, शुद्ध भाव अधिकार के इन्हीं प्रवचनों में प्रश्न हुआ है कि सिद्ध भगवान की पर्याय में भी कुछ और शुद्धता बढ़ती है, तो गुरु ने कहा कि बापू पर्याय के लिए यहां बस कर, द्रव्य के बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन पर्याय के लिए यहां बस कर। सिद्ध भगवान की दशा प्रकट हुई, यानी अब पर्याय की पूर्णता पर विराम लग गया। वैसी की वैसी शुद्धता की धारा चलेगी, लेकिन अब शुद्धता बढ़ेगी नहीं। ये दोनों, अब आचार्य कहते हैं कि इन दोनों में भेद क्यों जानूं? क्योंकि उनमें देखो लिखा ना, जिन सुबुद्धियों में तथा कुबुद्धियों ने प्रथम थीज शुद्धता छे। क्या मतलब इसका? कि निगोदिया जीव जो इतनी अशुद्धता की पर्याय में वर्त रहा है, आचार्य भगवान कहते हैं कि अरे भाई उसमें भी शुद्धता पहले से ही विद्यमान है। एक बात, इधर जो सिद्ध भगवान को प्रकट शुद्धता हुई है, कि हम हुई है की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस शुद्धता की बात कर रहे हैं जो इस शुद्धता के प्रकट होने के पहले भी विद्यमान है। क्या कहा? ये शुद्धता तो अभी प्रकट हुई है, हम तो उस शुद्धता की बात कर रहे हैं कि जो इसके भी पहले विद्यमान है। निगोदिया को भले ही अशुद्धता का भंडार चल रहा हो, लेकिन उसके अंदर भी शुद्धता का स्वरूप, शुद्धता पहले से विद्यमान है। हम उस शुद्धता की बात कर रहे हैं, हम उस त्रैकालिक शुद्धता की बात कर रहे हैं जो किसी अशुद्धता का अभाव करके प्रकट हुई शुद्धता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी शुद्धता है वो? कैसी शुद्धता है वो? कि जिस शुद्धता को कर्म के अभाव की कोई अपेक्षा नहीं है, जिस शुद्धता को अशुद्धता के अभाव की कोई अपेक्षा नहीं है। अरे पर्याय में अशुद्धता हो और घन घोर अशुद्धता हो, तो भी जिस त्रैकालिक शुद्धता को रंच मात्र क्षति नहीं पहुंचती, और पर्याय में सिद्ध जैसी शुद्धता प्रकट हो जावे, तो भी उस शुद्धता में, उस त्रैकालिक शुद्धता में रंच मात्र भी कुछ वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो जो शुद्धता है जो कुबुद्धि में भी विद्यमान है, जो सुबुद्धि में भी विद्यमान है, वो शुद्धता परिपूर्ण शुद्धता है। क्या कहा? देखो, प्रकट शुद्धता में शुद्धता का प्रकट होना, शुद्धता की वृद्धि होना, शुद्धता की पूर्णता होना, ऐसे भेद पड़ते हैं। कैसे भेद पड़ते हैं? शुद्धता प्रकट होती है, शुद्धता बढ़ती है, शुद्धता की पूर्णता होती है, कि ये भेद प्रकट शुद्धता में पड़ते हैं। और यहां चर्चा किस शुद्धता की है? कि जो उसकी स्वभावगत शुद्धता है, जो किसी के नहीं होने पर होवे, यानी कर्म के नहीं होने पर होवे, क्या ऐसी शुद्धता वो सापेक्ष शुद्धता है। जो अशुद्धता का अभाव करके होवे, कि वो सापेक्ष शुद्धता है। और जिसमें आज तक अशुद्धता कभी हुई ही नहीं। क्या कहा? कौन सी शुद्धता की चर्चा है? कि जिसमें आज तक कभी अशुद्धता हुई ही नहीं। देखो भाई, अशुद्धता क्यों आती है? अशुद्धता आती है, कभी भी अशुद्धता आती है, वो मिलावट के कारण आती है। गुरुदेव श्री की भाषा में एकड़े एक अने बगड़े बे, बोलते कि नहीं बोलते, है ना? तो एक मतलब मिलावट से अशुद्धता आती है। बिगड़ेगा कब? कि जब मिलेगा, एक से दो होगा तो अशुद्धता होगी। भगवान आत्मा, चैतन्य महाप्रभु, है ना, कि वो स्वभाव, नित्य स्वभाव, जिसे परम पारनामिक स्वभाव कहते हैं, जिसे निरपेक्ष स्वभाव कहते हैं, कि उस स्वभाव में अनादि से लेकर आज तक किसी की मिलावट हुई ही नहीं। निगोद दशा में था तब भी उसमें किसी की मिलावट नहीं थी, और सिद्ध दशा में हुआ, सिद्ध दशा में आया तो उसमें से किसी की मिलावट दूर हुई हो, ऐसा नहीं है। मिलावट तो थी ही नहीं, स्वभाव में मिलावट होती ही नहीं। फिर हुआ क्या था कि मिलावट होने का भ्रम हुआ था। क्या हुआ था, क्या हुआ था? मिलावट होने का भ्रम हुआ था। अरे इसी भ्रम का नाम मिथ्या दर्शन है। स्वभाव में कुछ मिलावट नहीं और मिलावट का भ्रम हो गया। जैसे किसी आदमी को यह भ्रम हो जाए, नींद आवे और नींद में एक सपना देखे वो, और क्या सपना देखे कि मैं मर गया हूं और चार आदमी है ना, हाँ वो जो भी प्रक्रिया होती है ना, अब वो कहे, अब वो नींद में बड़बड़ा, भाई मैं तो मर गया, भाई मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मुझे शमशान में ले जाके जला रहे हैं। अब उसे जिंदा करने के लिए क्या करें बताओ, बताओ है? कि अरे भाई तू अपनी आंखें खोल ले, तू मरा नहीं है, तुझे मरने का सपना आया है, तुझे मरने का भ्रम हुआ है। इसी तरह तेरे स्वभाव में अशुद्धता हुई ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव उसे नहीं कहते जो अशुद्ध हो, स्वभाव उसे नहीं कहते जो अपूर्ण हो, स्वभाव उसे नहीं कहते जो विकृत हो, है? स्वभाव उसे कहते हैं जो परिपूर्ण हो, स्वभाव उसे कहते हैं जो अविकृत हो, स्वभाव उसे कहते हैं जो शुद्ध हो, जिसमें अशुद्धता, अशुद्धता कभी स्वभाव नहीं हो सकता, अशुद्धता वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता। आ गया? तो अशुद्धता का भ्रम तो हुआ, और इस अशुद्धता के भ्रम का नाम ही मिथ्या दर्शन है, इसी का नाम कुबुद्धि है, बराबर है। अब अशुद्धता का भ्रम हुआ, लेकिन उस भ्रम की सत्ता भी है, अशुद्धता के भ्रम की सत्ता भी है, क्योंकि अशुद्धता मानी गई है, अशुद्धता का भ्रम किया गया है। लेकिन यदि उस भ्रम जैसी वस्तु हो जाए, अशुद्ध माना गया और अशुद्ध ही वस्तु हो जाए, तो फिर वो भ्रम भ्रम नहीं रहेगा, वो यथार्थता हो जाएगी। क्या मतलब? आत्मा को अशुद्ध माना गया, अनादि काल से आज तक एक एक समय करके हम आत्मा को अशुद्ध ही मानते आए, हम आत्मा को अपूर्ण ही मानते आए, है ना? और आत्मा कभी भी हमारी मान्यता के अनुसार अशुद्ध और अपूर्ण हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आत्मा अपूर्ण और अशुद्ध हो जाता तो अपूर्ण को अपूर्ण मानना, अशुद्ध को अशुद्ध मानना मिथ्या दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन होता। आ गया? लेकिन अगर यह मिथ्या दर्शन है, आत्मा को अशुद्ध मानना मिथ्या दर्शन है, तो आत्मा मिथ्या दर्शन के काल में ही मिथ्या दर्शन जैसा मानता है ठीक उसके विपरीत तत्व विद्यमान है। यह सिद्ध करता है कि आत्मा कुबुद्धि के समय भी, मिथ्या दर्शन के समय भी, भ्रम के समय भी, विपरीतता के समय भी परिपूर्ण और शुद्ध ही है। नक्की हुआ? अब एक बात कि जब आत्मा परिपूर्ण शुद्ध ही है तो सुबुद्धि ने आत्मा को शुद्ध किया है या आत्मा को शुद्ध माना है? बात पूरी हो गई, बात तो इतनी सी है कि आत्मा को सुबुद्धि माने सम्यक दर्शन, सम्यक सुबुद्धि का मतलब यहां कह लेना अपने को कि सम्यक दर्शन, कि वो आत्मा को शुद्ध नहीं करता, वो आत्मा को परिपूर्ण करता नहीं है, बल्कि जो आत्मा सदा से पूर्ण है, जो आत्मा सदा से शुद्ध है, जो आत्मा नित्य शुद्ध है, जो आत्मा नित्य पूर्ण है, जो आत्मा सहज शुद्ध है, जो आत्मा सहज पूर्ण है, उस पूर्ण को पूर्ण स्वीकार करने का नाम सुबुद्धि है। बात आई समझ में? आ रही है ना बात समझ में? कि सुबुद्धि माने शुद्ध को, आत्मा को शुद्ध बनाने का नाम सुबुद्धि नहीं, और आत्मा की शुद्धता को मिटाने का नाम कुबुद्धि नहीं। ध्यान देना, क्या मतलब? आत्मा सदा शुद्ध है और वो सदा शुद्ध है, उसको सदा शुद्ध नहीं मानने का नाम कुबुद्धि और सदा शुद्ध मानने का नाम सुबुद्धि। माने सुबुद्धि और कुबुद्धि आत्मा को अयथार्थ और यथार्थ मानने का स्वरूप, मानने की बात है। आत्मा कैसा है? आत्मा तो, आत्मा को मिथ्या दर्शन ने कितना ही लांछित किया हो, आत्मा पर कितना ही कलंक लगाया हो, लेकिन आत्मा तो उस सीता जी की तरह परम पवित्र है कि जो रावण की वाटिका में रहकर के भी अपने सतीत्व से रंच मात्र डिगी नहीं, जिस पर लोगों ने अनेक प्रकार के आरोप लगाए और उन आरोपों के वजह से उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी, तो अग्नि परीक्षा देने पर लोगों के चित्त में उनकी पवित्रता ख्याल में आई, या अग्नि परीक्षा देने से सीता जी पवित्र हुई? ये बताओ जरा, बोलो, ख्याल में आई या पवित्र हुई? कि नहीं नहीं अग्नि परीक्षा देके सीता जी पवित्र हो गई? अरे भाई साहब, पवित्र तो पहले से थी, वो परम पवित्र सती थी, लेकिन उस सती के सत पर जिसने शक किया, अग्नि परीक्षा से उनका शक दूर हुआ, सीता जी की पवित्रता नई प्रकट नहीं हुई, क्योंकि वो तो सदा से पवित्र थी। ये भगवान आत्मा भी ऐसा ही परम पवित्र तत्व है। मिथ्या दर्शन को शक है कि आत्मा पूरा न शुद्ध नहीं हो सकता, और अभी तो आत्मा अशुद्ध ही है, और अगर वो शुद्ध भी है तो कैसे है? कि भाई निश्चय नहीं से शुद्ध है। मैंने ये समझो कि जो नए इस अज्ञान को नाश करने का कारण बनना चाहिए था, वही नए ज्ञान अज्ञान की सुरक्षा के लिए कवच के काम में आ रहा है। यह हालत हो गई है। मतलब जिस नए के माध्यम से हमें अज्ञान को मिटाना चाहिए, हम अज्ञान की सुरक्षा की पहरेदारी उसी नए के भरोसे कर रहे हैं। गजब हो गया। अरे आत्मा निश्चय नए से शुद्ध है। क्या बोलता है ये? निश्चय नए से शुद्ध है, अभी तो अशुद्ध है कि नहीं है? अरे बोल भी, बोलना हो तो बोल भी इस तरह बोल कि भाई ठीक है, व्यवहार नहीं से, पर्याय अपेक्षा से आत्मा की अशुद्धता कही जाती होगी, लेकिन यथार्थ में तो आत्मा शुद्ध है ना। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि भाई अशुद्धता का जीवन, कितनी ही घनघोर अशुद्धता हो, अशुद्धता का जीवन कभी भी दो समय का नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? विचार करना जरा। दो समय अशुद्धता का जीवन नहीं है। कोई भी अशुद्धता दो समय भी टिकती नहीं है। वो की वो अशुद्धता दूसरे समय रहे ऐसा कभी नहीं होता। हर अगले समय में उस अशुद्धता का वे भले ही नई अशुद्धता प्रकट हो जाए, लेकिन वह की वह अशुद्धता दो समय टिकती नहीं है। अरे भैया, जिसका जीवन ही एक समय का है, वो तेरे लिए इतनी मुख्य हो गई कि तूने उस एक समय की अशुद्धता पर भरोसा करके अपने त्रिकाली स्वभाव को ही अशुद्ध मान लिया, और तेरा त्रिकाली स्वभाव कि जिसमें आज तक अशुद्धता ने प्रवेश किया नहीं, वो हिमालय है। अशुद्धता की परिणतियां कितनी ही उत्पाद वे होता रहे, लेकिन उस शुद्धता के हिमालय में उन अशुद्धता की परिणतियों का जरा भी प्रवेश नहीं हुआ। वो त्रैकालिक शुद्ध है, और ये अशुद्धता जो पर्याय में प्रकट हुई है कि वो एक समय की है, उसका जीवन एक समय का है। तो जब हम एक समय की पर्याय की अशुद्धता को महत्व देते हुए त्रिकाली अस्तित्व को, त्रिकाली शुद्ध अस्तित्व को तिलांजलि दे देते हैं, और एक समय की अशुद्धता के आधार पर उस त्रिकाली सत्ता को अशुद्ध मान लेते हैं, तो क्या इसका उल्टा हम नहीं कर सकते? काम तो इतना सही है, क्या एक समय की अशुद्धता को एक समय के लिए भूल जाओ। कितने समय के लिए? क्यों है ही एक समय की ना, वो तो कि एक उस एक समय को माइनस कर दो, एक समय को भूल जाओ, और उसके सामने जो त्रिकालीस शुद्ध अस्तित्व है, उस त्रिकालीस शुद्ध अस्तित्व को देखकर एक बार अंदर से यह घोषित करो कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं। अब अशुद्धता को ढूंढने जाओ, अब अशुद्धता को ढूंढने जाओ कि जब त्रिकाली अस्तित्व को देख करके अंदर से यह आवाज उठी, मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं। यह आवाज ध्यान से सुनना, यह आवाज त्रिकाली अस्तित्व की, त्रिकाल शुद्धता की आवाज, उसकी ध्वनि, उसकी स्वीकृति कभी भी त्रिकाली अस्तित्व नहीं करता है। त्रिकाले अस्तित्व की शुद्धता की स्वीकृति वर्तमान एक समय की पर्याय करती है, और जिस वर्तमान एक समय की पर्याय ने उस त्रिकाली अस्तित्व के सन्मुख होकर यह स्वीकृति की कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं, आचार्य कहते अब लाओ तुम ढूंढ के अशुद्धता कहां है। अशुद्धता का तो यह हाल है कि एक समय के लिए वो शुद्धात्मा को देखे तो कहीं जाने वाली पर्याय की अशुद्धता भी दिखाई नहीं देती, और वो अशुद्धता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि जिस एक समय की अशुद्धता के पीछे हमने उस त्रिकाली अस्तित्व का नकार कर दिया कि जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान को यह बहुत गंभीर कलश यहां पर कहना पड़ा, और जिसमें वो कहते हैं देखो कि जे सुबुद्धियों ने तेमज कुबुद्धियों ने प्रथम थी ज प्रथम से ही शब्द का प्रयोग किया। एकांत हो गया ना, जैन दर्शन में ही होता ही नहीं। अरे भैया, जैन दर्शन में ही होता है और जैन दर्शन में ही भी होता है, लेकिन कहां ही लगाना और कहां भी लगाना, यह विवेक भी जैन दर्शन के पास ही होता है। समझ आ गया? यहां का प्रथम से ही शुद्धता है, इसका मतलब क्या? ही शब्द लगा करके वो क्या बात कहना चाहते हैं कि जिसके अस्तित्व में कभी अशुद्धता का प्रवेश हुआ ही नहीं है, जिस जो अस्तित्व, जो नित्य अस्तित्व, जो सहज अस्तित्व, जो स्वाभाविक अस्तित्व, जो अनादि अनंत अस्तित्व, वह कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। वो तो पहले से ही शुद्ध है। पहले से ही शुद्ध का मतलब क्या? कि मैं शुद्ध मानूंगा, मैं उसे शुद्ध स्वीकार करूंगा, तब वो अस्तित्व शुद्ध होगा। कि ऐसी भी जिसको अपेक्षा नहीं है, तू स्वीकार करेगा तो पर्याय में प्रकट शुद्धता होगी, तू स्वीकार नहीं करे तो उस द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का अभाव नहीं हो जाएगा। अपने मंदिर में सिमंदर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। देखो, बहुत सरल उदाहरण से अपन चर्चा कर रहे हैं। सिमंदर भगवान की प्रतिमा विराजमान है और पूरे देश में ख्याति प्राप्त मंदिर और ख्याति प्राप्त भगवान है कि नहीं? पूरे देश में मतलब जगह जगह इस मंदिर की और इस प्रतिमा की भव्यता की चर्चा होती है। अब समझ लो, आज संडे का दिन है। क्या दिन है? संडे का दिन है। तो संडे के दिन में लोग बहुत आएंगे, सुबह भी पूजा हुई और अभी स्वाध्याय के बाद फिर पूजा होगी, तो आज तो भगवान को बड़ा मजा आएगा कि वाह, आज तो मेरी दो दो बार पूजा हो रही है। और किसी दिन मान लो भगवान की पूजा, मैं नहीं कह रहा कि यहां नहीं मिलते, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि किसी दिन भगवान की पूजा करने के लिए कोई नहीं आवे, बहुत जोर की बारिश आ रही है मुंबई में और पानी ऐसा आ गया कि घर से निकलना मुश्किल हो गया, और कोई आदमी भगवान की पूजा की बात तो छोड़ो, मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ पावे, है ना? मुंबई की वर्षा का कोई भरोसा नहीं, हाँ है कि नहीं? तो उस दिन भगवान बड़े मायूस मायूस से हो जाते होंगे, अरे भैया आज तो हम फालतू बैठे बेदी में, कोई पूजा करने वाला ही नहीं है। बोलो, क्या भगवान की पूज्यता भक्तों पर आधारित है? भक्त पूजा करें तो तो भगवान पूज्य है, और भक्त पूजा ना करें तो भगवान की पूज्यता खंडित होती है। अरे भगवान भक्तों के आधार से नहीं बने, भगवान तो भगवान है। अगर भक्त उनकी पूजा करता है तो पूजा करने का लाभ उसे मिलता है, और पूजा नहीं कर पाता है तो पूजा करने का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ से वंचित रहता है। भगवान की पूज्यता कभी भी भक्तों पर आधारित नहीं है, है ना। ये तो प्रकट भगवान की बात है, ये तो स्थापना निक्षेप के भगवान की बात है। लेकिन यहां जो स्थापित भगवान है, जिसकी कोई स्थापना नहीं करनी है, जिसकी अनंत अनंत केवली भगवान जिसको भगवान बता रहे हैं, क्या उस भगवान की भगवत्ता, क्या उस भगवान की पवित्रता इस परिणति के अधीन है कि ये परिणति उस भगवान को भगवान स्वीकार करे तो वो भगवान है, और ये परिणति उस पर भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करे तो वो पामर है? कुछ नहीं है। अगर ये परिणति उस भगवान को पामर स्वीकार करती है तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता और पर्याय में से पामरता नहीं जाती। और ये परिणति यदि उस भगवान को भगवान स्वीकार करे तो भगवान को भगवान स्वीकार करके यह परिणति उस भगवान पर कोई एहसान नहीं करती, बल्कि भगवान को भगवान स्वीकार करके यह परिणति स्वयं भगवान बन जाती है। बात तो इतनी सी है, गजब बात है। देखो क्या कहते हैं, प्रथम से ही शुद्धता है। बहुत गजब का बोल है भाई, हैं? देखो, तेमनामा काई पण भेद, कुछ भी भेद आया ना कि द्रव्य से भेद देखूं कि पर्याय से भेद देखूं, मैं कुछ भी भेद मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि द्रव्य से देखता हूं तो भगवान दिखता है, और जब द्रव्य को देखता हूं तो पर्याय में भी भगवान अपना प्रकट हो जाता है। क्या बात है इस समझ में, कि द्रव्य से देखता हूं तो द्रव्य भगवान है, और जब द्रव्य से देखा तो द्रव्य से देखने वाला कौन है कि पर्याय है। तो द्रव्य से जब द्रव्य उस पर्याय ने जब द्रव्य को द्रव्य से देखा, अभी तक क्या हुआ था कि पर्याय ने द्रव्य को पर्याय से देखा था, तो पर्याय की अशुद्धता को द्रव्य के खाते में डाल देता था वो। अब उस पर्याय ने द्रव्य को देखा, द्रव्य के सन्मुख होकर के देखा, तो द्रव्य तो भगवान था ही, और जब ये देखा कि मैं भगवान, द्रव्य की ओर देखने का मतलब क्या हुआ कि भगवान को देखा, भगवान पने देखा, भगवान पने देखा तो पर्याय में भी क्या भेद देखूं अब तो मैं, है? विचार तो करो भाई, कुछ भी भेद। और फिर क्या कह रहे हैं, मैं हूं क्या नए थी जानू, है ना। आचार्य भगवान कहते हैं मुझे ऐसा कोई नए दिखाई नहीं देता कि जिससे मैं सुबुद्धि और कुबुद्धि जिनमें पहले से शुद्धता है उनमें मैं कुछ भेद जानूं। तो अपन जैसे लोग सलाह देते हैं, आचार्य भगवंतों को भी सलाह देने का काम अपन लोग कर लेते हैं, कह रहे महाराज व्यवहार ने से भेद जान लो ना, क्या व्यवहार ने से तो जान लो कि अरे भाई ये कुबुद्धि और सुबुद्धि ये दोनों व्यवहार ने का विषय पर्याय है ना, पर्याय मात्र व्यवहार ने का विषय है। अभी क्या भेद जानू मैं, व्यवहार नय को तो मानो कुछ गिनती में ही नहीं लिया है। गुरुदेव श्री के शब्द हैं, व्यवहार नय की तो मस्करी उड़ाई है। बोलो ये कौन कह सकता है, ये गुरुदेव जैसे महापुरुष ही ये शब्द बोल सकते हैं, व्यवहार नय की तो मस्करी उड़ाई है, व्यवहार नय तो मानो कुछ है ही नहीं। और ये बात कि साहब व्यवहार नय की मस्करी उड़ाएंगे तो व्यवहार का लोप हो जाएगा ना, कि कोई बात नहीं व्यवहार का लोप होगा तो निश्चय प्रकट होगा, तू घबरा मत। ख्याल में आया कि नहीं आया, इस जीव को निश्चयाभासी होने का डर बहुत है, इतना डर है। अरे नहीं नहीं भाई वो बात ठीक है, द्रव्य स्वभाव की बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ी पर्याय की चर्चा भी करो। क्या मतलब है? तो अमृत खाते खाते बहुत टाइम हो गया, एक चम्मच जहर भी पी लो,
कैसी बातें करते हो?
अरे आ तो गया कि व्यवहार का मेरे में अभाव है, यह व्यवहार की चर्चा नहीं है तो किसकी चर्चा है? गुरुदेव श्री से हुआ था एक बार कि साहब आपके प्रवचन में व्यवहार की तो बात ही नहीं आती। एक सज्जन ने प्रश्न किया, सच्ची घटना है, कि आपके प्रवचन में व्यवहार की तो बात ही नहीं आती, आप तो शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा करते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आज आएगी व्यवहार की बात, आएगी। अच्छा तो क्या हुआ कि जिनका यह प्रश्न था उस दिन वो प्रवचन में आगे आगे आके बैठे। आज तो व्यवहार की बात आने वाली है ना, तो गुरुदेव ने कहा कि व्यवहार आता है होता है, लेकिन व्यवहार से भेद ज्ञान करना। आगे व्यवहार की बात क्या करना, कि आता है होता है भेद ज्ञान करना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। व्यवहार की बात माने लोग व्यवहार की बात किसे मानते हैं, कि व्यवहार को उपाधि बताओ तो व्यवहार की बात माने हम, कि तब आपने व्यवहार को माना। जैसे बहुत से लोग अपन लोग अभी गुरुदेव ने भी लिया था केशव भाई का उदाहरण लेकर के, निमित्त की चर्चा आई थी ना, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब हमारे उधर प्रांत में, हमारे प्रांत में बहुत चलता है, कांजी स्वामी निमित्त को उड़ाते हैं, कांजी स्वामी निमित्त को नहीं मानते। मैंने कहा सुनो, निमित्त को कांजी स्वामी ही मानते हैं। वो क्या बात कर रहे हो, वो निमित्त को करता क्या मानते हैं, वो तो कहते हैं कुमार से घड़ा नहीं बनता। मैंने कहा इसी का नाम तो निमित्त को मानना है। किसका नाम? कि अरे निमित्त को कर्ता मानना, वो तो निमित्त को उपादान बनाना है, क्योंकि जो यक जो परिणमित होता है उसका नाम उपादान है, जो कार्य रूप परिणमित होवे उसका नाम उपादान। तो अगर तुमने निमित्त को कर्ता माना तो मैंने कहा भाई साहब निमित्त को कर्ता मान करके सारी दुनिया निमित्त को हर समय फांसी पर चढ़ा रही थी। समझ में आ गया? यह एक सौराष्ट्र का संत हुआ कि जिस संत ने निमित्त के कर्ता पने का निषेध करके पंचम काल के अंत तक निमित्त को अभय दान दिया है। सोच लेना जरा, अभय दान दिया है तो इस महापुरुष ने दिया है, निमित्त को निमित्त मानने का नाम है ना। तो यही है कि व्यवहार को तो मानते ही नहीं। अरे व्यवहार को हे ही मानने का नाम व्यवहार को मानना है। बोलो आप जहर को मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ बताओ। क्या बात कर रहे हो, जहर को भी मानने की चीज है। मैंने कहा जहर को जहर मानना, जहर को मानना है। अब कोई कहे कि नहीं हम तो तब मानेंगे कि जब जहर को मानना, हम तो तब मानेंगे कि जब जहर एक गिलास पानी में एक चम्मच मिला करके उसको घटाघट पी जाओ तो हम जहर को मानना मानेंगे। कि जहर को मानना मानोगे कि आत्महत्या करना मानोगे इसको? तो व्यवहार को व्यवहार मानना माने व्यवहार जो कहता है वो केवल कथन मात्र है, कहने की बात है, उस बात में कुछ भी दम नहीं है। जैसे गंगा नदी और गुरुजी पढ़ा रहे नक्शे पर, नक्शा लगा रखा गुरुजी ने भूगोल का और गंगा नदी और वो सारी नदियां नदियों के बारे में पढ़ा रहे, यहां से निकली है यहां तक जा रही है, इतना लंबा पार्ट है, इतना चौड़ा पार्ट है, इतना पानी बहता है। इतने में एक शिष्य को जोर से प्यास लगी थी, उसने कहा गुरुजी ठहरो पांच मिनट ठहरो, बाद में पढ़ाना, क्या क्या काम है? कह लो पहले मेरे को गंगा का पानी पीना है। क्या मतलब इसका? कि गंगा का पानी पीना है तो गंगा के पास जा। तो क्या आप कह रहे हो ना इतना पानी है इतना लंबा चौड़ा पाट है, कि भाई गंगा को समझाने के लिए नक्शे का उदाहरण दे रहे हैं, नक्शे से हम समझा रहे हैं। व्यवहार कथन मात्र है, वो कह वो जो कहता है। व्यवहार का मतलब क्या होता है? कि व्यवहार का मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूं वैसा नहीं है, ये मानो। अभी देखो क्या हुआ था, मैं मेरे लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण माना। मैं भी खंडवा गया था करीब 2 साल पहले, तो वहां का एक बहुत बढ़िया उदाहरण मेरे काम आया और वो व्यवहार को समझाने के लिए बहुत बढ़िया मजेदार उदाहरण। कि हम लोग विधान होता था, पूजा होती थी, प्रवचन होता था और उसके बाद हम लोग घूमने जैसे जाए गए कभी, तो अपनी जो धर्मशाला है उसके बाहर एक दुकान लिखी दुकान थी और उस दुकान पर एक बहुत जोरदार बोर्ड लिखा हुआ, उसमें लिखा नकली सोने की असली दुकान। ये सच्चाई है, और नहीं हो ना तो आप खंडवा जाके देखना। और मेरे साथ में 2-3 साथी थे, मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा अपन फिर चलते हैं, अपने से पढ़ने में कुछ गलती हुई है। फिर दो तीन बार हमने जाकर के देखा, वहां लिखा था नकली सोने की असली दुकान। इसका मतलब क्या होता है समझे? इसका मतलब होता है कि इस दुकान पर सोने जैसी दिखने वाली चीजें मिलेंगी, लेकिन गारंटी से वो सोना नकली है, और नकली सोना बेचने की असली दुकान यही है। समझ में आ गया? ये व्यवहार ने भी नकली सोने की असली दुकान है। आ गया? जैसा व्यवहार ने कहता है, व्यवहार ने कहता है मैं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर निरूपण करता हूं, मैं कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता हूं, मैं मेरे सद्दान से मिथ्यात्व होता है, इसलिए तुम मेरा सद्दान छोड़ देना, निश्चय न किसी को किसी में नहीं मिलाता, किसी को किसी में नहीं मिलाता, यथावत जैसा है वैसा निरूपण करता है, इसलिए तुम निश्चय नहीं का सद्दान अंगीकार करना। आ गया? ये कहते कि नहीं नहीं भाई, व्यवहार ने तुम तो बड़े, अब वो खुद कह रहा है कि मैं असत्य हूं, मैं कथन मात्र हूं, मैं कहने मात्र हूं, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम तो बिल्कुल बहुत बड़े हो, तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब ऐसे जीवों को कौन समझावे, क्या समझावे, है ना? बात बहुत है, कलश बहुत गजब का है। अभी तो गुरुदेव का तो अपन ने अभी शुरू ही नहीं किया है, गुरुदेव का प्रवचन भी इसके आधार पे अपन और इस पे चर्चा करेंगे। ये इस बिंदु पर विचार करना जो नकली सोने की असली दुकान है, क्योंकि इस पर अपन व्यवहार की चर्चा और थोड़ी विस्तार से करेंगे, ताकि इसमें ख्याल में आएगा कि कहां किस तरह उसका प्रयोग हुआ है। गुरुदेव ने ये बोला है ना, व्यवहार ने कथन मात्र छे, कथन मात्र छे, तो उस कथन मात्र के पीछे क्या गुरुदेव, कितना गहरा अभिप्राय गुरुदेव अपने सामने रख रहे हैं, वो चर्चा अपन विस्तार से करेंगे।
जय जिनेन्द्र। आप सब जानो छो के देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया थी अपना पार्ला मंदिर ना दिवाड़ी ने महावीर भगवान निर्वाण दिन निमित्ते अपने इमने आमंत्रण आपी ने बोलाया है। गई काल रात थी एमन स्वाध्याय चालू थयु छे, आजे बीजा नंबर नु स्वाध्याय हतो एटले नियमसर ऊपर बहुत सुंदर स्वाध्याय अपनी भाषा में, भले पोते हिंदी भाषी है पण बहुत सुंदर भाषा में गुजराती पोते सारी रीते जाने छे। खास आप सबने एक विनंती है कि रातनो स्वाध्याय स्वानुभूति दर्शन ऊपर पूज्य बहनश्रीनी जे अंतरनी जे वातो हती, कदाच अत्यार सुधी हूँ जाणु छु त्यां सुधी अपना जैन मंदिर में स्वानुभूति दर्शन ऊपर क्यारे कोई पंडित जी द्वारा स्वाध्याय थयो नथी। पहली ज वखत आपणे एक स्वानुभूति दर्शन ऊपर आपणे स्वाध्याय लई रह्या छीए, तो सौने खास खास विनंती है कि रातना स्वाध्याय में आप सौनी हाजरी होय एवी अमणा तरफ थी एक खास विनंती है। जय जिनेन्द्र।
सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, 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 सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जेमने पांच पांच कलनक ते भरत भूमि ने पावन करी छे एवा ऋषभादिति महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान नौ चार खाते कर्म नो नाश करीने साक्षात समूसण मां शोभायमान दिव्य ध्वनि ना दाता रेवा सिमंदर आदित्य अजित वीर्य पर विश्वर्यमान जिनेन्द्र भगवान नौ ધ્રુવધામના ધ્યાનની ધક્તિ ધૂનીને ધકાવનાર અડગ જ્ઞાન બલના ધારક એવા શ્રી બાહુબલી મુનિન્દ્ર ભગવાનનો સ્યાદવાદરૂપ અનેકાંતમય બે વિરોધ નહીને અવિરતપણે પ્રકાશનારી સમયસાર નિયમસાર પ્રવચનસાર આદિ સમસ્ત જીનવાણી મહાતનો પ્રમત પ્રમદ શમા ઝુલનારા કળિકાલ સર્વજ્ઞ દેવ હાલતા ચાલતા સિદ્ધ સમાન પ્રચુર સ્વસંવેદનના આસ્વાદી એવા કુનકુનાદી સમસ્ત આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ ગુરુ ભગવાનનો પારિણામિક ભાવ સંબંધી બારંગના વચન દ્વારા શિણમો ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિનો અમોઘ ઉપદેશ દર્શાવનાર અનંત અનંત ઉપકારી શ્રી કહાન ગુરુ દેવનો કહાન ગુરુ મહિમા બતાવનાર પ્રશમ રસમાં મગ્ન પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો અપૂર્વ અસરને આત્મસિદ્ધિની ભાવના જાગૃત કરાવનાર એવા કૃપાળુ દેવનો શ્રી પરમ પવિત્ર સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો નિજ નિધિ નિજ મે બતાય અનંત ઉપકાર હૈ ઉસકે લિયે જિન વાણી મા કો વંદના શત બાર હૈ. બોલો સ્યાદવાદરૂપ અનેકાંતમય જિન વાણી માતનો. અત્યારે હવે ઉપર સમૂહ પૂજા ચાલશે.